ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 20। मेरे पीछे दोहराइए, ननो एष वज्र तव शक्र तेजसा हरे दधीचे तपसा च तेजितः तेन एव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितः यतः हरि विजयः श्री गुणास्तत। ननवेश वज्रस्तव शक्र तेजसः हरे दधीचे तपसा च तेजितः तन्नैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिर्विजय श्री गुणास्तत। ननवेश वज्रस्तव शक्र तेजसा हरे दधीचे तपसा च तेजितः तन्नैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरि विजयः श्री गुणास्तत। ननवेश वज्रस्तव शक्र तेजसा हरे दधीचे तपसा च तेजितः तन्नैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिर्विजय श्री गुणास्तत। ननु निश्चय ही एष यह वज्र वज्र तव तुम्हारा शक्र हे इंद्र तेजसा तेज से हरे है श्री भगवान विष्णु के दधीचे है दधीची की तपसा तपस्या से च तथा तेजितः शक्ति संपन्न तेन उससे एव निश्चय ही शत्रुम अपने शत्रु को जहि मारो विष्णु यंत्रितः भगवान विष्णु द्वारा आदेशित यत जहां कहीं भी हरे हे भगवान विष्णु विजय विजय श्री ऐश्वर्य गुणः अन्य सद्गुण ततः वहां। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है वह भगवान विष्णु के तेज तथा दधीचि की तपस्या शक्ति से समन्वित है। चूंकि तुम यहां भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह है कि तुम्हारे वज्र के छूटते ही मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण तुम्हारे साथ हैं। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। वृत्रासुर ने इंद्र को न केवल विश्वास दिलाया कि वज्र अजय है, वरना अपने प्रति जल्दी से जल्दी प्रयोग किए जाने के लिए भी उत्साहित किया। वृत्रासुर उत्सुक था कि भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित वज्र के प्रहार से उसका वध हो, जिससे वह भगवान के धाम जा पहुंचे। इंद्र को इस वज्र के चलाने से विजय मिलेगी और स्वर्ग लोगों का भोग प्राप्त होगा, किंतु वह जन्म और मरण के चक्र में फंस जाएगा। इंद्र वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करके सुख भोगना चाहता था, किंतु वह वास्तविक सुख नहीं था। स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक के नीचे स्थित है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनर्वर्तिनो अर्जुन। भले ही मनुष्य ब्रह्म लोक को पाले, किंतु वह पुनः निम्न लोकों में गिरता रहता है। किंतु यदि कोई भगवान के पास चला जाता है तो वह इस संसार में नहीं लौटता। वृत्रासुर को मारने से इंद्र को कोई लाभ नहीं होगा, वह इसी संसार में बना रहेगा, किंतु वृत्रासुर वैकुंठ लोक को चला जाएगा। अतः विजय तो वृत्रासुर की होनी थी, इंद्र की नहीं। छोटा सा परपट है पर बहुत मुख्य बात कही है इसके अंदर, इसकी अभी चर्चा करेंगे। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है, वह भगवान विष्णु के तेज और दधीचि की तपस्या शक्ति से समन्वित है। चूंकि तुम यहां भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने के लिए आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे वज्र के छूटते ही मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण तुम्हारे साथ हैं। इसमें लास्ट लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान विष्णु जिसका साथ दे रहे हैं उसकी विजय निश्चित है। यही बात जो है भगवद गीता के अंदर संजय कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति ममा। कि जहां पर कृष्ण है, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर परम धनुर अर्जुन है, जहां ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये संजय कह रहे हैं कि जहां भगवान उपस्थित हैं वहां तो विजय होनी ही है, उसके बिना कोई चारा है ही नहीं। तो यहां जो है इसके परपट में प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बात लिखते हैं जो समझनी चाहिए कि इंद्र का लक्ष्य क्या है। देखिए इसका जो ट्रांसलेशन है उसमें शब्द आया है ननु निश्चय ही एष यह है वज्र वज्र तब तुम्हारा तुम्हारा तब शब्द इस्तेमाल हुआ है। मतलब वृत्रासुर किसको संबोधित कर रहा है, उसका संबोधन तब जो शब्द है किसके प्रति है। तो प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर तरीके से, कितने समझाने के तरीके से हम लोगों के लिए कितना सिंप्लीफाई कर दिया कि तब के उत्तर में उन्होंने लिख दिया हे स्वर्ग के राजा इंद्र, ताकि एक लाइन में ही बात समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि तुम्हारा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा, संबोधन किसको किया जा रहा। संबोधन किया जा रहा है इंद्र को, तो इंद्र लिख देते। शब्द क्या इस्तेमाल किए, स्वर्ग के राजा। कि जैसे ही स्वर्ग की बात आती है तो स्वर्ग की क्वालिटीज, स्वर्ग के जो गुण हैं, स्वर्ग के जो प्रॉपर्टीज हैं, स्वर्ग के जो गुण हैं, स्वर्ग की जो क्वालिटीज हैं, वो हमारे हृदय में आंदोलित हो जाती हैं, हमें पता लग जाता है स्वर्ग के क्या लक्षण हैं। तो शब्द इस्तेमाल किए हे स्वर्ग के राजा इंद्र। सिर्फ इंद्र इस्तेमाल कर सकते थे, तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु कितने सुंदर तरीके से हम लोगों को एक लाइन में समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य में लिख दिया, उसके अनुवाद में लिख दिया है हे स्वर्ग के राजा इंद्र, ताकि सब बातें एक ही लाइन में सिंप्लीफाई हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए, समझ में आ जाए। तो यहां जो स्वर्ग की चर्चा हो रही है तो स्वर्ग का क्या गुण है, क्या क्वालिटी है स्वर्ग की। स्वर्ग के बारे में भगवद गीता के अंदर क्या लिखा है, क्या चर्चा आ रही है, क्या बात खुल के आती है। और उस बात क्या रही है कि वृत्रासुर जो है वो तो वैकुंठ धाम जाएगा और स्वर्ग का राजा इंद्र जो है स्वर्ग का उपभोग करेगा। मतलब जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा, वहां से बाहर नहीं निकल सकता। हालांकि उसके पास एक बहुत भारी शक्ति है। शक्ति क्या है? भगवान विष्णु का उसमें सामर्थ्य छुपा हुआ है, दधीजी की तपस्या छुपी हुई है। साधारण शक्ति नहीं है। जिस वज्र से वृत्रासुर का संहार हो रहा है वो वज्र साधारण नहीं है। उस वज्र के अंदर जो है आप देखेंगे स्पष्ट लिखा हुआ है यहां कि उसमें भगवान विष्णु का तेज। तेज का अर्थ क्या है? हम साधारण भाषा में यूज करते हैं तेज, भाई तुम्हारे चेहरे में बड़ा तेज टपकता है, मतलब बड़ा चमकदार चेहरा है। यहां चमकदार की बात नहीं हो रही है। यहां तेज का मतलब क्या है? भगवान विष्णु का तेज। तेज का अर्थ क्या है यहां? ये भगवान विष्णु की शक्ति जो है उसमें आप प्रकट है, मतलब इट इज एज गुड एज सुदर्शन चक्र, उसी तरह है। पर डिप्यूट किसको किया गया है मारने के लिए? वृत्रासुर को। वृत्रासुर को मारने के लिए डिप्यूट किसे किया गया है? इंद्र को। और दधीचि ने जो तपस्या करी है उस तपस्या के फलस्वरूप इस वज्र के अंदर जो शक्ति है वो साधारण नहीं है। उस वज्र से वृत्रासुर को मारा जाएगा। बट उसके मरने के बाद भी इंद्र कहां है? इंद्र फिर उसी स्वर्ग में जहां पर वो पहले था। फायदा क्या हो रहा है उसको? कि उसने स्वर्ग को आरक्षित कर लिया। वृत्रासुर को मारने के बाद वो स्वर्ग का राजा हो गया। उसे वहां रक्षा है कि अब मेरा और कोई एनिमी नहीं है, और कोई दुश्मन नहीं है, या और कोई मेरे को पदच्युत करने का प्रयास नहीं कर रहा। आई एम स्टिल ऑन द सीट। तो वो स्वर्ग जहां का वो राजा है उसके गुण क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या हैं? साधारण भाषा में कहें तो बड़े गुण हैं। साधारण भाषा कैसे? कि जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं जी स्वर्ग लोक सिधार गया। उनके लिए स्वर्ग बहुत बड़ी चीज है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, और पता ही नहीं उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि स्वर्ग के ऊपर भी कोई लोक है। कि जन लोक है, तपोलोक है, ब्रह्म लोक है, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। परव्योम का ज्ञान नहीं है उन्हें, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान नहीं है उन्हें, वैकुंठों का ज्ञान नहीं है उन्हें, साकेत का ज्ञान नहीं है, नरसिंह लोक का ज्ञान नहीं है, वराह लोक का ज्ञान नहीं है, वामन लोक का ज्ञान नहीं है उन्हें, किसी का ज्ञान नहीं उन्हें, गोलोक वृंदावन का ज्ञान नहीं है। उनके लिए हाईएस्ट प्लेटफॉर्म क्या है? स्वर्ग। मिडल प्लेटफॉर्म क्या है? पृथ्वी। और लोएस्ट प्लेटफॉर्म क्या है? नरक। नरक और पृथ्वी के बीच में जितने लोक हैं उनका उन्हें ज्ञान नहीं है। अरे नरक तो जेल है जहां पर सजा मिल रही है, प्योरीफाई किया जा रहा है आपको। बदमाश, लुच्चा, लफंगा, बलात्कारी, दुनिया भर के गलत काम किए हुए हैं, मरेगा तो कार्ड में लिखा आएगा स्वर्ग सिधार गए। किसी ने आज तक नहीं लिखा नरक सिधार गए। लिखता है कोई? कभी लिखा देखा? कभी सुना देखा? कभी किसी के मुख से शब्द निकली? नहीं, ये स्वर्ग ही जाएगा। इट इज सो इजी टू एंटर देयर। पब्लिक की निगाह में, जनरल पब्लिक की निगाह में स्वर्ग लोक में जाना बड़ा ही आसान है। जिसको मर्जी हो मुंह उठा के चल देता, इधर मरा उधर स्वर्ग लोक पहुंच गया। ऐसे एंट्री गेट इज ओपन टू ऑल, एनीबडी कैन एंटर। नहीं, यहां कहा जा रहा है जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, कामसिद्धित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता, तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वाहा। सोया, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। देवताओं की शरण में जाते हैं कौन? जिनकी बुद्धि में कामनाएं बसी हुई हैं, जिनकी बुद्धि में इस संसार को भोगने की इच्छा बसी हुई है, जिनकी बुद्धि में इंद्रिय सुख इंद्रिय भोग प्राप्त करने की इच्छा बसी हुई है, वो उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। अलग अलग देवता आपको अलग अलग फैसिलिटी सुविधा प्रदान करते हैं, जिस सुविधा को चाहिए उसके अनुरूप उस देवी या देवता की आप सेवा पूजा अर्चना करेंगे तो आपको वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। शर्त यह है कि उसको विधि पूर्वक करना। यहां लिखते हैं, और वे अपने अपने विधि विधानों स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भौतिक सुख इस संसार में प्राप्त कर रहे हैं, सेवा देवताओं की कर रहे हैं। अब अल्टीमेट भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जब आप शास्त्र के अनुसार कार्य करते हो तो आप बेसिकली सकाम कर्म कर रहे हो। अगर आपने किसी तरीके से तिड़कम लगाई, दिमाग लगाया, कहीं थोड़ी बहुत बात सुन ली और निष्काम कर्म करना शुरू कर दिया, निष्काम कर्म योग नहीं किया, सिर्फ निष्काम कर्म किया है। निष्काम कर्म का सिंपल से एग्जाम्पल है, या आपने भूखे को खाना खिला दिया, कोई कामना नहीं करी उससे, आपने गरीब को 10 रुपए 50 रुपए 20 रुपए दे दिए, कंबल दे दिया, कपड़े दे दिए, कोई कामना नहीं करी उससे, आपने कामना रहित काम किया है तो उसके फलस्वरूप आपको एक पुण्यफल की प्राप्ति होगी। अगर आपके निष्काम कर्म पुण्यफल इतने संचित हो जाते हैं कि आपको देव पद प्राप्त हो सकता है तो आपको देवलोक में एडमिशन मिल जाती है, आप देवलोक में चले गए। पर देवलोक में जाने के बाद क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है? वहां आप एंजॉय कर रहे हो। देव योनि जो है कर्म योनि नहीं है, वहां कर्म नहीं होता, भोग योनि है। पशु योनि, देव योनि या किसी भी और आप लोक में चले जाओगे, सब योनियां जो हैं भोग योनियां हैं। जितना आपके लिए भगवान ने फिक्स किया हुआ है उतनी ड्यूटीज आप परफॉर्म कर रहे हो, बाकी आप एंजॉय कर रहे हो। आप वहां पर कर्म करके उसके फल की सृजन नहीं कर सकते। कर्म करके फल का सृजन करना केवल इस मनुष्य योनि में उपलब्ध है और कहीं नहीं है। और मनुष्य योनि में जब आप आते हो, कब आते हो? अपने कर्मों के फल के स्वरूप। जब व्यक्ति ने सतोगुण में कार्य किए हुए हैं, थोड़ा रजोगुण मिश्रित है, तो उसको जो है दोबारा से मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है। अगर आप सतोगुण में नहीं हो, रजोगुण तमोगुण में हो, तो आपको उससे छोटी योनियां प्राप्त होंगी, उससे छोटी होंगी, उससे छोटी होंगी। परंतु अगर आप जो है सतोगुण रजोगुण के मिश्रण में हो तो आपको मनुष्य योनि प्राप्त होगी, जिसके फलस्वरूप फिर आप कर्म करोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे उसका फल प्राप्त होगा, वैसे ही योनि में जाओगे। अब आप देव योनि में चले गए तो देव योनि के बाद जो है भगवान फिर नवे अध्याय में कहते हैं कि जो देवताओं की भक्ति करते हैं देवताओं के लोग जाते हैं, जो भूत प्रेतों की करते हैं भूत प्रेतों के लोग जाते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं मेरे लोग आते हैं। परंतु जब उनके पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं तब उनको लौटकर इस पृथ्वी पर फिर से आना पड़ता है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो देवलोक की क्वालिटी क्या हुई कि आप देवलोक जाकर भी भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल पाए। देवलोक जो है इसी भौतिक संसार में है, इसी भौतिक संसार में, वो आध्यात्मिक संसार में नहीं है। अब वहां जाने के लिए अगर देवलोक भी जाना है या देवताओं से कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए भी भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। अल्टीमेट प्रोवाइडर कौन है? अल्टीमेट प्रोवाइडर कौन है? भगवान है। तो भगवान तो कह रहे हैं सातवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में, चतुर्वेदा भजन्ते माम ये जना परियुपासते, कि चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन है? आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में जा रहे हैं, परंतु किस लिए जा रहे हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए। तो जो प्राप्त करने जा रहा है क्या कहलाया? पुण्यात्मा। और पुण्यात्मा का डेस्टिनेशन क्या है? अल्टीमेटली स्वर्ग लोक। आरती मतलब अर्थ क्या होता है? व्हाट इज आरती? आप आरती करते हो, आरती अर्थ क्या है? व्हाट इज आरती? अर्थ किसे कहते हैं? दुख में है जो। अर्थ का मतलब है जो व्यक्ति दुख में है, और दुख में जो पुकार लगाता है उसको आरती कहते हैं। जो व्यक्ति दुख में है उसके लिए आरती शब्द इस्तेमाल हुआ, और भगवान की पुकार लगा रहा है या किसी देवी देवता की पुकार लगा रहा है अपने दुख का निराकरण करने के लिए, तो उन शब्दों को आरती के नाम से पुकारा गया। मैं आरती कर रहा हूं। क्या आरती कर रहा हूं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आरती है ना, कि अपने आप कष्टों का निवारण चाहते हो, सुख और संपत्ति चाहते हो, दुख से निवारण चाहते हो, यही तो कर रहे हो आप। तो आरती जो है वो भी भगवान की शरण में जाता, जिज्ञासु भी जाता है। जिज्ञासा क्या करता है? वो भगवान से दो प्रकार की जिज्ञासा कर सकता। एक जिज्ञासा है क्लास वन, दूसरी जिज्ञासा है क्लास टू। अगर क्लास टू को इन्फीरियर जिज्ञासा माने, निम्न जिज्ञासा माने, तो भगवान से जिज्ञासा करता है कि हे भगवान, मैं किस तरीके से भौतिक संसार में सुख भोग उपलब्ध कर सकूं, कैसे संसार को एंजॉय कर सकूं, उसके लिए मुझे आप कुछ प्रदान कीजिए, रास्ता बताइए, या मेरे पे कृपा कीजिए जिससे मैं भौतिक संसार में सुख भोग उपलब्ध कर सकूं, इस भौतिक संसार को एंजॉय कर सकूं। क्लास वन, क्लास वन अफसर ऊंचा होता है कि क्लास टू अफसर ऊंचा होता है? सरकार में क्लास वन ऊंचा होता है कि क्लास टू ऊंचा होता है? क्लास वन हायर। तो हायर जिज्ञासा क्या है कि हे भगवान, मुझे रास्ता बताइए कि कैसे मैं भौतिक संसार के चक्र से बाहर निकल जाऊं, मुझे विधि बताइए, मुझे फॉर्मेट बताइए, मेरे पे ऐसी कृपा करिए कि मैं इस भौतिक संसार के चक्र से बाहर निकल जाऊं, मुझे वो रास्ता चाहिए, ये मेरी जिज्ञासा है आपसे। दोनों तरह के लोग जो है भगवान के पास जाते हैं। अब तीसरा कौन है? अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन है? अर्थ क्या होता है? अर्थ मेरे जीवन का अर्थ क्या है? आपके जीवन का अर्थ क्या है? साधारण भाषा में शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपके जीवन का अर्थ क्या है? देखो भाई, मेरा जीवन तो आनंद लेने के लिए है, खुशी मिले, सुख मिले, उस सुख के लिए, उस खुशी के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो मिले। तो अल्टीमेटली अर्थ जो है सुविधाएं प्राप्त करने, उसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। धन के बिना तो सुविधा मिलेगी नहीं। कहीं भी जाना है तो आपको बस का किराया, रिक्शा का किराया, टांगे का किराया, कार, हेलीकॉप्टर, जहाज, समुद्री जहाज, मतलब कोई ना कोई सुविधा आपको चाहिए, हर चीज के लिए धन चाहिए। तो इस भौतिक संसार में अपने डिजायर्स को, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो भगवान से सहायता मांगता है, वो अर्थार्थी है। वो सहायता किसी रूप में हो सकती है, मुझे धन मत दो आप पर कार भेज दो, मुझे धन नहीं चाहिए जी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे एक मकान दिलवा दो बस किसी तरीके से, कोई दे जाए मुझे तो भी ठीक है चलेगा। अर्थ है, मतलब मेरे जीवन का अर्थ क्या है? भौतिक आनंद की प्राप्ति और उस भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो मुझे आप प्रोवाइड करिए, ये अर्थार्थी है। कि अपने जीवन का अर्थ, जिसको समझता नहीं मेरे जीवन का अर्थ क्या है, वो ये नहीं समझता है कि मेरे जीवन का अर्थ जो है इस संसार से बाहर निकल के भगवान के संसार में पहुंचना। वो क्या समझता है कि मेरे जीवन का अर्थ है इसी संसार में भोगों को भोगना और उन भोगों से आनंद की प्राप्ति करनी, जो कि एक सपना है, सपना है। पर इसके लिए भगवान की शरण में जाता है। और चौथा व्यक्ति कौन है? ज्ञानी। यह ज्ञानी शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पढ़े लिखे के लिए? किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो क्या क्या बात आती है कि बड़ा पढ़ा लिखा है जी, बड़ा विद्वान है। यहां पे ज्ञानी शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके लिए जो भगवान को समझता है, भगवान के साथ अपने संबंध को समझता है, अपनी स्थिति को समझता है, भगवान की स्थिति को समझता है, दोनों के संबंध की स्थिति को समझता है और उस भगवान के संबंध को कैसे निभाना है इसको समझता है कि व्हाट इज माय अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अर्थात जो इस सारे का प्रयोजन जानता है, प्रयोजन क्या है, ये मनुष्य शरीर मुझे क्यों प्राप्त हुआ है, उसे प्रयोजन जानता है, वो ज्ञानी है। तो भगवान की शरण में क्यों जाता है वो, या प्रयोजन जानता है तो व्हाई डज ही गो देयर? आपको बाहर वहां क्लास हो रही थी, उसमें प्रभु जी ने, नित्यधाम प्रभु ने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपके जीवन का प्रयोजन है भगवत धाम जाना। आपको समझ में आ गई बात? खत्म हो गई समझ में आ गई तो ठाकुर जी के आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हो आके? क्यों, किस लिए? क्योंकि अल्टीमेट शक्ति भगवान से ही मिलनी है उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए। खुद मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। यही भगवान जो है भगवद गीता में कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप से स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही समझने वाला श्लोक है। फिर दोबारा दोहराता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या बात इसमें से निकल के आ रही है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। सिंपल बात है, भगवान सबके हृदय में है, एग्रीड? जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसमें स्थिर कर देता हूं, अर्थात देवता में अपने प्रति श्रद्धा स्थिर कराने की शक्ति नहीं। बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है ये, कि अगर हम किसी देवता की पूजा करते हैं, देवता की सेवा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, उसकी सेवा में लगते हैं, तो वो देवता के पास ये शक्ति नहीं है कि अपनी श्रद्धा, अपने प्रति श्रद्धा हमारे हृदय में फिक्स कर दे। वो श्रद्धा भी भगवान फिक्स कराते हैं। जब कार्य भगवान कर रहे हैं तो मैं सोचूंगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं भगवान के धाम जो है भगवान की सेवा करके जा सकता हूं। पर भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि युगम थम ये नमामु पयान्ति ते। जो प्रीति पूर्वक निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं। भजन कैसा होगा? प्रीति पूर्वक, प्रेम सहित, कंपल्शन में नहीं, मजबूरी में भजन नहीं होगा। मजबूरी में कैसे होता है? व्हाट इज मजबूरी? इच्छा तो है नहीं पर फिर भी कर रहा हूं। देखो जी, ऐसा है कि मैं मंदिर गया था, वहां मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ठाकुर जी के दर्शन बड़े अच्छे थे, कथा बड़ी अच्छी हो रही थी, भक्त बड़े अच्छे थे, बड़े मतलब उन्होंने मेरे को गाइड किया, बड़े सुंदर तरीके से बताया कि भगवान को भोग लगा के आपको भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। अब हमने जो है घर के अंदर भोजन को बनाना है और भगवान को भोग लगाना। अब पिक्चर की टिकट आ गई, घूमने जाना है,
टाइम हो रहा है, पर अभी भगवान को भोग लगाना है। तो अब बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, आप फंस गए यार, कैसा समझा दिया उन्होंने, इसके बिना तो गाड़ी नहीं है, हैं? और पिक्चर की टिकट छूट रही है, मेरी ट्रेन छूट रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ऑफिस छूट रहा है, मेरा ये हो रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, ना करें तो बुरा कहें पाप खाएगा, अब प्रभु जी को जाके क्या जवाब दूंगा, भगवान को क्या जवाब दूंगा, बड़ी मजबूरी सी आ गई। मीन्स आप कर तो रहे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर डूइंग, पर वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो करना है, वो प्रेम पूर्वक नहीं है। कैसा है वो, ये बड़ी मजबूरी है, करना पड़ रहा है मेरे को, तो प्रीति नहीं है उसमें। प्यार स्वाभाविक होता है, अंडर कंपल्शन नहीं होता। मैं आपसे कहूंगा आप मुझसे प्यार करना शुरू, डंडा लेके सर पे बैठ जाऊंगा, प्यार करोगे क्या मेरे से? वह कर प्यार, यू लव मी, ऐसा होगा क्या? प्यार तो स्वाभाविक है, अपने आप आता है। और प्यार की बिगनिंग कहां से होती है, सेवा किस कैसे आती है, सेवा में क्या, सेवा का बेसिक रूट क्या है? सेवा का रूट है त्याग। अब त्याग कर रहे हो अपनी इच्छाओं का, अपने मान का, अपने ईगो का, सबका त्याग करके आप सेवा में आते हो, उसके बिना नहीं आ सकते आप। त्याग करते हो तब सेवा में लगते हो। आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो आपके हृदय में त्याग की भावना होनी चाहिए। मैंने अपना ईगो त्याग दिया, मैंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, मैंने अपनी पोजीशन त्याग दी, तब मैं सेवा में हूं। अगर आप भगवान के सामने खड़े हो गए, आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई हैव कम टू सर्व यू, तो भगवान सेवा स्वीकार करेंगे क्या? तेरी ईगो तेरे सर पे खड़ी है। भगवान सेवा स्वीकार करेंगे जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, यू हैव ए प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस। तो यहां पर जो है, किसी देवता के अंदर भी वो शक्ति नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की श्रद्धा अपने प्रति स्थिर कर सके। तो स्थिरता कौन देते हैं, श्रद्धा स्थिर कौन कराते हैं? स्वयं भगवान। क्यों कराते हैं, किस लिए कराते हैं? व्हाट इज द नीड? भगवान हृदय में बैठे हैं, वो तुम्हारी इच्छा की डायरेक्शन को नहीं चेंज कर देते हैं। कि तुम देवता के प्रति चाहते हो, मेरे प्रति करो। आप ऑफिस में बैठे हो सीनियर पोजीशन में, आपका एक असिस्टेंट जो है आपके मैनेजर की सेवा पूजा करता है, उसको बुला कहते हो आई एम द बॉस, मेरी करो। भगवान सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान इच्छा की पूर्ति केवल इसलिए करते हैं कि भगवान ने आपको इंडिपेंडेंस ऑफ विल दिया है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। और भगवान कहते हैं मैं किसी भी कीमत पे, किसी भी शर्त में तुम्हारी इंडिपेंडेंस विल में बाधक नहीं बनूंगा। आई वॉन्ट कंपेल यू टू डू एनीथिंग, प्रेरणा देता हूं, यस डू दिस और डू दिस। आपके मन में भाव आता है, परंतु यहां से बाहर निकल के भाव चेंज हो जाता है। दुख चल रहा है, कष्ट चल रहा है, परेशानी हो रही है बाहर, अरे प्रभु जी ठीक है आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो, करते रहो। वो ऐसा है कि मेरा, मेरे भाई के यहां भी समस्या हो गई थी, उसने जो है 16 सोमवार जल चढ़ाया, ठीक हो गया। वो 40 दिन पैदल फला मंदिर में गया, ठीक हो गया। उसको 18 शुक्रवार रखे, ठीक हो गया। आपने कहा ऐसा, ये तो कर ही रहा हूं, 18 शुक्रवार भी रख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता? कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहा हूं ना, क्या फर्क पड़ता? बट एक्स्ट्रा करते ही आप किस प्लेटफॉर्म पे आ गए? सरेंडर नहीं रहा, कृष्ण की भक्ति करते हैं, हां जी कृष्ण की भी भक्ति करता हूं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, हां जी कृष्ण की ही भक्ति करता हूं। तो भी अच्छा है या ही अच्छा है? अब ही के प्लेटफॉर्म से डेविएट हो गए, अब भी के प्लेटफॉर्म पे चले गए। जैसे ही आप उस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आपकी श्रद्धा डेविएट होनी शुरू हो जाएगी। अब यहां चर्चा आ रही है कि जब मैं उनसे मरूंगा,
तो मेरे मरते ही मैं भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा। और भगवान के धाम जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। तो लोग जो है साधारण भाषा में प्रश्न कर देते हैं कि अभी क्यों आए, जब भगवान ने कहा है कि मेरे धाम से जीव लौटकर नहीं आता तो हम अभी क्यों आ गए, अभी यहां पर क्यों हैं? वाई दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन विच पीपल आस्क, पूछते हैं हमसे। उसका कारण यह है कि अभी उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं है, प्रॉपर तरीके से समझा नहीं है, प्रॉपर तरीके से सुना नहीं है। भगवान ने कहा है आ ब्रह्म भुवना लोका, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं आप, आ ब्रह्म पुना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेत्या तो कौनताय पुनर्जन्मना विद्यते, कि जो मेरे धाम में आ जाता है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो मेरे धाम में आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। एक बार न तद भासते सूर्यो न शशांको न पवक है यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो मेरे धाम में आ जाता है पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आता। तो दोनों श्लोकों में भगवान ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में एक बात कही कि जो मेरे धाम में लौट कर आते हैं, पहली बार आने की चर्चा नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम में कैसे आए इट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बोला अलग स्टोरी है। ये नहीं कहा कि मेरे धाम से नीचे क्यों जा रहे, कह रहे जो मेरे धाम में लौट कर आता है, अर्थात पहले वो अपने 84 लाख योनियों को खूब आनंद ले चुका है एज पर हिज ओन एंजॉयमेंट रिक्वायरमेंट, जो उसकी थी कि मुझे भोगना है उसने वो एंजॉयमेंट को कर लिया है, अब वो जब लौट के मेरे धाम आ गया है, नाउ ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, समझ गया है बात को, भैया यहां से बाहर जाऊंगा तो कष्ट के सिवाय कुछ नहीं है, दुख के सिवाय कुछ नहीं है। अब वो यहां से दोबारा सेम स्पिरिट में आना नहीं चाहता जिस स्पिरिट में वो पहली बार आके यहां से गया था, बिकॉज अब वो लौट कर आया है। जो लौट कर आता है वो नहीं जाता, जो ओरिजिनली यहां था वो जा सकता है। कैसे जा सकता है? अपनी इच्छा के द्वारा, अपने भोगने की इच्छा के द्वारा, अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के द्वारा, कि जैसे आप भोग रहे हो आनंद ले रहे हो ऐसे ही मुझे भी आनंद प्राप्त करना है, मुझे भी ऐसी ही कुर्सी चाहिए, ऐसा ही रूप चाहिए, ऐसा सब कुछ चाहिए। यहां चर्चा हो रही है कि भगवान के हाथों मरने वाले जो हैं भगवान के लोग जाते हैं, पर वृत्रासुर जो है भगवान के धाम जा रहा है, पर बाकी जितने असुर हैं जितने भगवान के हाथों मरे हैं सब लोग कहां गए हैं? ब्रह्म ज्योति में। तो क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई सो? मुक्ति कितने प्रकार की है? कितने टाइप्स की मुक्ति है? 5 प्रकार के। पहली का नाम सायुज्य, दूसरी अब समझाऊंगा क्यों ये स्टेप्स क्यों है, आई विल एक्सप्लेन यू। दूसरी का क्या है? सालोक्य। तीसरी क्या है? सामीप्य। चौथी क्या है? सारूप्य। और पांचवी क्या है? साष्टी। अब बोलेंगे आपने ऐसे डिवीजन क्यों किया, हम तो साष्टी को पहले मान लेते हैं, वाई दिस डिवीजन इज लाइक दिस? आप शब्द के अर्थ से समझिएगा। आपको मैंने वीजा दिया कि आप हिंदुस्तान में आ सकते हैं, आप विदेश में किसी कंट्री के निवासी हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपसे कहते हैं कि मैं आपको वीजा दे रहा हूं, नाउ यू कैन कम टू माय कंट्री, पर कन्याकुमारी में रहोगे, समुद्र के अंदर जो वहां समुद्र है उसमें तैरते रहोगे, मतलब अभी आप जो है पृथ्वी पर लैंड नहीं कर रहे हो, ब्रह्म ज्योति में हो, मतलब अभी आप धाम में नहीं आए, सायुज्य मुक्ति हो गई। आप पृथ्वी पर प्रवेश कर सकते हो, कन्याकुमारी में रहोगे, प्रेसिडेंट हाउस तक नहीं आ सकते आप,
आप मेरे से आपको साल्लोक है, मैंने अपना लोक दे दिया है, परंतु मेरे लोक में आप बड़ी दूरी पर स्थित है, कहीं डिस्टेंट अवे फ्रॉम मी है, तो मेरे ही लोक में है, तो भारतवर्ष में ही, पर रह कहां रहा है? कन्याकुमारी में रह कहां रहा है? वो असम के नुक्कड़ किसी कोने में वहां पर पड़ा हुआ है तो हमारे ही देश में, परंतु पड़ा किसी कोने में। सालोक के हो गया सामीप्य, अभी तू दिल्ली आ जा, तेरे को कन्याकुमारी से दिल्ली बुला लिया, चाणक्यपुरी में आ जा, प्रेसिडेंट हाउस के आसपास आ जा, अर्थात यू आर वेरी नियर टू मी, यू आर वेरी समीप, मेरे बिल्कुल आसपास हो, बहुत ही समीप हो मेरे, सामीप्य है। अब आपको मैंने पतक नहीं बनाया, मोर नहीं बनाया, घास नहीं बनाया, मैंने क्या बनाया? अपने जैसा रूप दे दिया। नाउ यू गेट सारूप्य। अच्छा, अब और अपलिफ्ट करता हूं, क्या अपलिफ्ट है? कि मेरे जैसा ऐश्वर्य भी प्राप्त करो, रूप तो मेरे जैसा है ही, मेरे समीप हो, मेरे लोक में हो, बट नाउ यू गेट एन एडिशनल एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? कि मेरे जैसा ऐश्वर्य अर्थात साष्टी, मेरे जैसा ऐश्वर्य तुमको प्राप्त होगा। सो नाउ विच इज द बेस्ट? साष्टी के अंदर सारूप भी है, साष्टी में सामीप्य भी है, साष्टी में सालोक्य भी है, और ऐश्वर्य। तो हाइएस्ट प्लेटफॉर्म क्या हुआ? साष्टी का। तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन साष्टी। यहां पर जो है वृत्रासुर भगवान के धाम में जा रहा है, परंतु जितने असुर पहले मारे गए हैं वो असुर कहां जाते हैं? उनका डेस्टिनेशन है कहां? ब्रह्म ज्योति। इसका जो है उत्तर मिलेगा इसके बाद 23वें से लेके और 27वें श्लोक तक, जहां जो है बता रहे हैं कि जो वृत्रासुर है भगवान का भक्त है, कि पिछले जन्म का राजा चित्रकेतु है, जिसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया नारद जी से, पुत्र की मृत्यु के बाद नारद जी ने जो उसे ज्ञान दिया है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। ये तो पार्वती जी का जो श्राप मिला है उस श्राप के अनुरूप यहां पर जो है वो असुर योनि भोग रहा है, कि शिवजी जब पार्वती को समस्त सभा में बैठे हुए आलिंगन कर रहे थे, जब कामदेव ने चैलेंज दिया था उनको, तो वो जो है वहां पर हंस दिया उनको देख के, देखे इतने बड़े वैष्णव, इतने बड़े देवता, और समाज के अंदर बैठ के, सबके सामने बैठ के पत्नी का आलिंगन कर रहे हैं। तो शिवजी ने तो क्षमा कर दिया, पार्वती जी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, तुम असुर योनि प्राप्त हो, और असुर योनि यहां प्राप्त हो रही है, पर बेसिकली कौन है? भगवान का भक्त। तो यहां पर जो है चर्चा आ रही है कि वहां जब 23वें से लेकर 27वां श्लोक आप करेंगे, कि जहां पर जो है वो भगवान की स्तुति कर रहा है, उसे पता है, इंटरनली उसे पता है कि मेरे को यहां से लिबरेशन के बाद भगवान के धाम जाना है, परंतु इंद्र विजय प्राप्त करके भी इसी भौतिक संसार में स्वर्ग लोक में ही उलझा रहेगा, यहां से बाहर नहीं निकल रहा। तो हु इज बेटर? देवता होके सुख भोग की प्राप्ति के लिए यत्न करना, उसके लिए अपनी सीट को सेव करना, वो बेटर है, या असुर योनि प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लगे रहना वो बेटर है? इस पर्टिकुलर संदर्भ में है तो असुर योनि, परंतु प्राप्त हो रहा है भगवान का धाम। कंडीशंस अप्लाई, स्टार लगा हुआ है स्टार लगा हुआ है, कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति। यहां वृत्रासुर को जो है भगवान की भक्ति के माध्यम से उसको जो है भगवान का धाम प्राप्त हो रहा है, परंतु इंद्र के पास ये सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं है। तो यहां कहते हैं यदि कोई भगवान के पास चला जाता है तो इस संसार में नहीं लौटता, इंद्र को कोई लाभ नहीं होगा, संसार में बना रहेगा, किंतु वृत्रासुर वैकुंठ लोक को चला जाएगा। विजय तो वृत्रासुर की होनी है, इंद्र की नहीं। इंद्र के साथ एक समस्या है बड़ी भारी। वो समस्या क्या है? पोसेसिवनेस। पोसेसिवनेस, मेरी गद्दी, मेरा सिंहासन, मेरा ये। अरे विश्वामित्र ने तपस्या करी तो उसकी गद्दी हिल गई। कोई भी तप करता है तो इंद्र को अपना सिंहासन
डामाडोल लगता है। उसे कहता उसे लगता है कि जो तपस्या करने वाला है कहीं मुझे रिप्लेस न कर दे, और उसके एब्स में क्या करता है, उल्टे सीधे काम कर बैठता है, वो कुछ ना कुछ करता है अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए। यही हम भौतिक संसार में कर रहे हैं कि अपनी गद्दी सुरक्षित रखने के लिए मेरी दुकान चलती रहे, उसके लिए मैं कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई तिड़कम, कोई ना कोई पॉलिटिक्स, कोई ना कोई डिप्लोमेसी, कुछ ना कुछ अडॉप्ट करता रहता हूं, जिससे कि मेरी जो स्थिति है वो बनी रहे, उसमें कहीं फॉल डाउन ना आए। वो स्थिति किसके लिए है? भौतिक संसार में अपने आप को स्थापित करने की, भौतिक संसार में आनंद लेने की, भौतिक सुख भोग उपलब्ध करने की। मतलब मैं उस भौतिक संसार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूं, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। हरे कृष्णा। श्रील भगवान की।